दस ग्यारह छाछठ की दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो सबको यहाँ आना है, वहां जब खाली हो जाएगा तब बाप सबको ले जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पढ़ना है स्कूल में, कब कब जाना ये तो ला नहीं है। जो स्कूल में रेगुलर नहीं जाते हैं जो बच्चे, तो ला को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर फाइन डाला जाता है, फाइन भरो। तो ये भी ऊंचे से ऊंचे बेहद बाप का स्कूल है, इसमें पंक्चुअल और रेगुलर रहना चाहिए। बाबा ने तो पढ़ाई के लिए हर प्रकार का प्रबंध भी कर दिया है, बेसिक नॉलेज के लिए भी प्रबंध किया, फिर क्लास ट्रांसफर होता है हायर क्लासेस में उसके लिए भी प्रबंध कर दिया। बेसिक नॉलेज में टीचर अलग होते हैं, स्थान अलग होता है, फिर हायर क्लासेस में जाते हैं तो टीचर भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाता है। तो बाबा ने तो हर प्रकार की पढ़ाई का प्रबंध किया है ना, ऊंचे टीचर भी तैयार किए हैं और बेसिक नॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है। कब भी कहां किसके पास पढ़ाई पोस्ट से नहीं जाती है, पढ़ाई का प्रबंध किया हुआ है। ये बेहद के बाप की पढ़ाई तुम बच्चों के पास जाती है, पढ़ाने वाला एक ही है। माँ तो देखो कितने कागज खपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, बाप कहते हैं 7 दिन का कोर्स लेकर के फिर कहाँ भी रह करके पढ़ते रहो, आधा कल्प के रोगी है, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। बाप कहते हैं तुम कितने छीछी हो चुके हो, सतयुग में तुम्हारी निरोगी काया थी, तब तुम कितने स्वच्छ थे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो देखो क्या हाल है, ये सारा खेल भारत पर ही है, तुम ही 84 जन्मों का पार्ट बजाते हो, तुम ही माना, तुम किसे कहा जाता है। जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे होते हैं उनसे तुम कहा जाता है, सन्मुख नहीं होते हैं तो उनसे वह कहा जाता है। तो तुम 84 जन्म लेने वाले हो क्योंकि बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो, सन्मुख माना मुख के सामने बैठकर सुनते हो, हद का भी अर्थ है सन्मुख का, एक तो मुख के सामने उसको कहते हैं सन्मुख और दूसरा विमुख। भले मुख के सामने कोई बैठे हो लेकिन विपरीत संकल्प चलाए रहे हो तो सन्मुख होते हुए भी विमुख हो गए। तो जो सन्मुख बच्चे रहते हैं सदाकाल, कभी भी विमुख नहीं होते, क्योंकि विमुख वही होंगे जिन्होंने पास्ट के 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों का आसरा लिया होगा, उन दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित हुए होंगे, तो वो संकल्पों का खून विरोधी पने का उनके अंदर आ जाता है। जो कभी भी विपरीत बुद्धि न हुए हों तो वो मेरे बच्चे हैं, उनको कभी विपरीत संकल्प आ ही नहीं सकता। तो मेरे जो सन्मुख तुम बच्चे हो वह 84 जन्म लेने वाले हो, एक जन्म भी कम नहीं, वो पक्के देवताएं बनते हैं। तुमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, अपनी आत्मा का सृष्टि रूपी चक्र में कैसे कैसे पार्ट चलता है कैसे कैसे हम 84 के चक्र में पार्ट चलाते हैं, अपनी आत्मा कैसे कैसे घूमती है, वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। और फिर चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और जितना जो बनावेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। उच्च पद का मदार किस मत पर हुआ? नहीं, पढ़ाई तो ठीक पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बहुत होते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उच्च पद नहीं पाते हैं। यहां भी ऐसे हैं, पढ़ते तो हैं, बहुत ज्ञान में बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को पढ़ाई नहीं पढ़ाते। जो बाप से लिया है वो दूसरों को भी देना चाहिए ना। तो नियम बना दिया, कौन ऊंचा पद पावेंगे और कौन नीचा पद पावेंगे, कौन की आत्मा रूपी माला का मणका ऊंची स्टेज में जावेगा और किसकी माला का मणका नीची स्टेज में जावेगा। ऊंची स्टेज में कौन जावेंगे? जिन्होंने बहुत सर्विस की होगी। सेवा के बैलेंस के आधार पर कोई भी आत्मा का पद आंका जावेगा। कोई यह नहीं कह सकेगा इनका इतना ऊंच पद क्यों बन गया, हमने क्या कमी कर दी। नहीं, उनका जो सेवा का बैलेंस है वो सबको दिखाई पड़ेगा। कोई किसी के ऊपर उंगली उठाने योग्य नहीं रहेगा। ये राजाई स्थापन हो रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार छोटे बड़े राजाएं बनेंगे। नंबरवार तो पद तो होते रही है, और प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। क्या जो सत्युग के पहले जन्म की प्रजा होगी और जो सत्युग के आखिरी जन्म की प्रजा होगी उसमें भी अंतर होगा। पहले जन्म की प्रजा सब ज्ञानी तो आत्माएं होंगे, कूट कूट के प्रजा में बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ होगा। आखिरी जन्म की जो प्रजा होगी उतना ज्ञानी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले जन्म की जो प्रजा बनी है उसने डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ी, और जो सत्युग के आखिरी जन्म की प्रजा होगी उसने डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी। भले सत्युग में आ देंगे, फिर किससे पढ़ी है? कोई ना कोई आठवें नंबर का नारायण है जो सत्युग के आठवें जन्म में राजा बनता है, उससे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ेंगे। तो फर्क तो पड़ जाएगा ना, ये बेहद की पढ़ाई है। तो दिल से पूछना चाहिए, हम कितनी आत्माओं को आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं? जितना ज्ञान का चक्र हमारी बुद्धि में चलता है ऐसा आप समान हमने कितनी आत्माओं को बनाया है? जितना जितना जो बनावेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। तुम्हारी है माया के साथ युद्ध। माया माने माया माना रावण के जो 10 सिर बनते हैं उनमें 5 विकार माया के हैं। माया रावण कहा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो सिर क्यों दिखाए गए? रावण के चित्र में ये 5 सिर क्यों दिखाए गए हैं? भक्ति मार्ग में तो 10 सिर पुरुषों के दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं 5 हैं पुरुष मुख और 5 हैं स्त्री मुख। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 पुरुष मुख, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये 5 तत्व हैं प्रकृति के स्त्री मुख। तो मुख दिखाए गए हैं चित्रों में, चित्रण किया गया है, तो चरित्र करने वाले भी कोई 100% होंगे या नहीं होंगे? इतनी बड़ी दुनिया है तो उसमें नंबरवार कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते हैं या सब एक जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो कोई ऐसे भी होते होंगे जो 100% कामी हो या 100% क्रोधी हो। तो जो जितनी संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं उन विकारों में तो सर्वोपरि का नाम लिया जाता है कामी। जैसे कह दिया अर्जुन, तो एक अर्जुन की बात है क्या? नंबरवार सभी अर्जुन है, सभी पुरुषार्थ का अर्जन करते हैं, सभी का अपना शरीर रूपी रथ है। उस शरीर रूपी रथ में परमात्मा बाप सहयोग करते हैं, सेवा का दृष्टि से सहयोग देते हैं, वृत्ति से सहयोग देते हैं, वाचा की सेवा करने का सहयोग देते हैं बच्चों को। तो बच्चों के रथ को चलाते तो है ना, विकारों से लड़ाई लड़ने में भी सहयोग देते हैं। रथी रूपी बच्चों का सारथी है ना, तो ऐसे रथी रूपी अर्जुन में जो अव्वल नंबर अर्जुन है उसका गायन हो जाता है, चित्रण किया जाता है, नाम दिया जाता है, बाकी नंबरवार समझे जाते हैं। ऐसे ही नंबरवार भीम है, नंबरवार नकुल है, नंबरवार सहदेव है, पांडवों में भी नंबरवार है और कौरवों में भी नंबरवार है। ऐसे नहीं कि 100 ही कौरव थे, बहुत थे, यादवों में भी नंबरवार है। ऐसे ही असुरों में भी नंबरवार है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। अलग अलग धर्मों के गुणधर्म तो बताए हुए हैं। कौन सा धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा काम विकार भोगा जाता है? सबसे जास्ती व्यभिचारी धर्म है इस्लाम। अभी 100-150-200 वर्ष से क्रिश्चियंस की संख्या दुनिया में बढ़ गई है, लेकिन उससे पहले की हजारों वर्ष की जो हिस्ट्री है उसे देखने से पता चलता है सारी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान छा गए थे। मुसलमानों की संख्या हमेशा ज्यादा रही। तो इतनी पैदाइश का कारण क्या हुआ है? बेविचार। जैसे कुत्ते कुतरियों में बहुत ज्यादा बेविचार होता है तो ढेर सारे पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही क्रोधी, तो क्रोधी में भी नंबरवार है। कोई तो अव्वल नंबर क्रोधी होगा, उसका फिर चित्रण किया गया। तो अभी ये चेहरे तैयार हो रहे हैं, चित्र तैयार हो रहे हैं चरित्र के आधार पर। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में चित्र तैयार होते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी कैटेगरीज हैं। भक्ति मार्ग में 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं, 9 ऋषियों से कहते हैं 9 गोत्र हुए, शांडिल्य गोत्र, बर्जवार गोत्र वगैरह वगैरह है। 9 ही धर्मों की बात। इन 9 धर्मों में जिन आत्माओं ने बहुत पवित्रता से अपना जीवन बिताया, नंबरवार, वो सत्युग में जाकर के नारायण बनते हैं नंबरवार। उनको ऋषि की उपाधि दी गई है, फिर उनके कोई बीज भी है, जड़ें आधार कही जाती है, बीज उनका जन्म देने वाला कहा जाता है पिता। बीज में ज्यादा ताकत होती है या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या टहनियों में ज्यादा ताकत होती है? पत्तों में ज्यादा ताकत थोड़ी होगी। जो बीज रूप आत्माएं हैं दुनिया की वो है 9 लाख। 9 लाख में भी आधे हैं जन्म लेने वाले बीज और आधे हैं जन्म देने वाले। जो 9 लाख जन्म लेने वाले हैं वो कृष्ण की आत्मा की कैटेगरीज के, और जो जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख राम की आत्मा की कैटेगरीज के। उन बीजों में ही फिर दो प्रकार के भाग हुए, दाई ओर के और बाई ओर के। वाम पक्षी कहे जाते हैं, वाम मार्गी। कौन सा हाथ शुभ होता है? बाया हाथ शुभ माना जाता है या दाया हाथ शुभ माना जाता है? दाया माना राइट हैंड। राइट हैंड शुभ माना जाता है। कोई काम करते हैं, दान धर्म का काम करेंगे तो कौन से हाथ से करेंगे? दाए हाथ से। और गंदा कार्य बाए हाथ से किया जाता है। भोजन कौन से हाथ से खाना चाहिए? दाए हाथ से खाना चाहिए। तो ये हाथ माने भुजाएं, भुजाएं माने मददगार। 9 लाख आत्माओं में कुछ दाई ओर की है और कुछ बाई ओर की है। जो दाई ओर की है वो है श्रेष्ठ कर्म करने वाली। कितनी है? 4.5 लाख। वो जन्म लेने वाली है या जन्म देने वाली है? हैं? पक्का पक्का बताओ। कोई बताते लेने वाली, कोई कहते देने वाली। है दाई ओर की जन्म देने वाली, वो दाई ओर की है। और जो जन्म लेने वाली है वो बाई ओर की है। अच्छा, उनमें से देवता स्वभाव की किस तरफ कौन सी है? जन्म लेने वाली या जन्म देने वाली? है जन्म देने वाली देवता स्वभाव की। झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो। 4.5-9 लाख है ना, 9 लाख बीज है सृष्टि के। उन 9 लाख बीजों में से 4.5 लाख है जन्म देने वाले और 4.5 लाख है जन्म लेने वाले। तो जो जन्म लेने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं स्वभाव संस्कार में, दिव्य गुणों की धारणा में, या जन्म देने वाले श्रेष्ठ हैं? देखो दो दो बातें हो रही। श्रेष्ठ पावरफुल नहीं बताए, श्रेष्ठ कौन है? जन्म लेने वाले देवता स्वभाव के हैं। कृष्ण और कृष्ण की कैटेगरी की जो आत्माएं हैं वो जन्म लेने वाले हैं, और उनको जन्म देने वाले राम की कैटेगरी की आत्माएं हैं, वो जन्म देने वाली है। तो दोनों में देवता कौन है? देवता ही पार्ट कौन बजाते हैं? जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं वो देवी देवता का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में भी, संगम युग में जब ब्राह्मण बनते हैं तो भी देवी देवता का पार्ट बजाते हैं सुख देने का। और जो जन्म देने वाले हैं वो अगर देवी देवताएं बन जाए तो इस आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। उनमें से जो मुखिया है उसमें तो शिव बाप प्रवेश करते हैं। शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं तो उसके पार्ट को कहा जाएगा ना वो ब्राह्मण बनता है ना देवता बनता है। अगर वो ब्राह्मण बन जाए देवता बन जाए तो आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मेरी महिमा अलग है। क्या देवताओं की महिमा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। और मेरी महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है? नहीं। मैं सर्वगुण संपन्न देवता बन जाऊं तो उन देवताओं की रक्षा कौन करेगा? जो देवी स्वभाव के बच्चे हैं, भोले स्वभाव के बच्चे हैं, इनको कौन रक्षण करेगा? मैं 16 कला संपूर्ण नहीं बनता हूं। ये तो सूर्यवंशी बच्चे हैं, साक्षात ज्ञान सूर्य में है, सुप्रीम सोल बाप से प्रवेश करता है। शिव आता है तो पहले ज्ञान किसको देता है? सूर्य को ज्ञान दिया। तो सूर्य किसको ज्ञान देगा? सूर्य चंद्रमा के बच्चों को ज्ञान पहले देगा या सूर्य सूर्य के बच्चों को ज्ञान देगा? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो पहले ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान की रोशनी की तिलमिलाहट उनमें सबसे जास्ती होती है, ज्ञान को धारण करते हैं। लेकिन ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत किसको होती है? गंदे कपड़े को होती है या स्वच्छ कपड़े को होती है? जो जन्म जन्मांतर का ज्यादा गली जो पत्ता हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, उसको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो बाप के रुद्रमाला के बच्चे हैं, उन बच्चों को बाप पहले कलेक्ट करके ज्ञान की गहराइयां देता है, और जो विजयमाला के बच्चे हैं उनको बाद में देता है। माने जन्म देने वालों में भी दो कैटेगरीज के हैं, क्या? एक रुद्रमाला और दूसरी विजयमाला। विजयमाला के बच्चे किसको फॉलो करते हैं? सूर्य को फॉलो करते हैं या चंद्रमा को फॉलो करते हैं? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वो जितना ज्ञान चंद्रमा को 100% फॉलो करने वाले होते हैं, उतनी और ब्राह्मण आत्माएं फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन वो ज्ञान सूर्य को शुरुआत में नहीं पहचान पाते। कौन? विजयमाला के मणके। क्यों नहीं पहचान पाते? घाटा नहीं आ जाएगा है? ज्ञान सूर्य को पहले पहले पहचान लें तो क्या बुराई है? नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर रानियां बनती रही है, जिन रानियों ने पवित्रता के लिए जौहर किए हैं। विदेशी सेना के चुंगल में नहीं आती थी, जहां देखा कि हमारे राज्य की हार होने वाली है तो पहले से ही जौहर की प्रक्रिया तैयार रहती थी और अग्नि में कूद जाती थी। विदेशी उनके शरीर को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, विदेशियों के हाथ कुछ भी नहीं आता था। तो जो असली प्योरिटी की पावर धारण करने वाली वो जो शक्तियां हैं, जो शिव शक्तियों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती हैं संगम युग में, उन आत्माओं को जास्ती ज्ञान लेने की दरकार नहीं होती। वो तो है ही जन्म जन्मांतर का स्वच्छ कपड़ा। ज्यादा पतित कौन होते हैं? भारत की रानियां या भारत के राजाएं? जो भारतवासी राजाएं हुए हैं वो जन्म जन्मांतर के पतित बनते रहे। उन पर विदेशियों की छाप बहुत जास्ती पड़ी, विदेशियों में व्यभिचार फैला। तो उन्होंने कहा, अच्छा हम तुम्हारे भी बाप हैं। एक एक राजा ने 100-100, 1000-1000 रानियां रखने शुरू कर दी। ये भारतवासी राजाओं की हिस्ट्री में रहा है। तो अनेक रानियां रखेंगे तो जास्ती पतित बनेंगे, जास्ती पतित पना आएगा तो बुद्धि कैसी बनेगी? जामड़ी बुद्धि बनेगी या श्रेष्ठ बुद्धि बनेगी? बुद्धि जामड़ी होती गई। इतनी तक जामड़ी बुद्धि हुई कि आपस में लड़ाई लड़ लड़ के सब राजाइयां छिन्न भिन्न हो गई, राजाई हाथ से ही चट हो गई। अभी शूटिंग हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है? शुरू शुरुआत में जो गीता पाठशालाएं एडवांस में चलती थी तो उसमें सब इकट्ठे होकर के बैठते थे। अभी अभी सबने अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। अभी गीता पाठशाला में ये होने लगा, तेरी गीता पाठशाला मेरी गीता पाठशाला। यहां तक होते होते सब अपने अपने घर में कैसेट सुनना शुरू कर दिया। अरे गीता पाठशाला जाने होता क्या है? कैसेट ही तो सुनाई जाती है, वही बाबा की वाणी। हम अपने घर में, हमारे घर में टीवी रखा हुआ है, हम भी सुन लेंगे। अरे सुन तो लेंगे, लेकिन जो संगठन की पावर है वो संगठन की पावर नहीं मिलती है अकेले बैठ के सुनने, वो वाइब्रेशन नहीं होता है। इसका हिसाब यूं लगाइए, कंपनी में जाकर के जो भट्टी करते हैं और अनुभव करते हैं वो अनुभव अपने घरों में कर पाते हैं? नहीं कर पाते। मुसलमान लोग इस बात को पक्का पक्का जानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहते होंगे, उनका बुद्धि का योग मक्का मदीना में ही रखा रहेगा। उनकी दिली लगन ये होती है कि हम अपनी जिंदगी में एक बार दो बार जरूर हज की यात्रा करेंगे और मक्का मदीना पहुंचेंगे। लक्ष्य है उनके जीवन का। भारतवासी मुसलमान होते हैं, वो अजमेर शरीफ को मक्का मदीना के बाद महत्व देते हैं। जब मौका मिलेगा तो अजमेर शरीफ उसमें जाएंगे। तो उनका मानना है कि घर में बैठ करके जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 10 गुना फल मस्जिद में जाके पढ़ने से मिलता है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 10 गुना फल जामा मस्जिद में जाकर के बैठ करके पढ़ने से मिलता है। जामा मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है उससे 100 गुना फल अजमेर में जाकर के पढ़ने से मिलता है, और काबा में जाकर के पढ़ते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। तो ये तो गुरुओं ने अपनी बातें बनाई हुई है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि जहां जितना हुजूम इकट्ठा होता है एक जैसी आत्माओं का, उनका वाइब्रेशन इकट्ठा हो जाता है और उस वाइब्रेशन को तोड़ना मुश्किल होता है। वो वाइब्रेशन बहुत मुकाबला करता है दुनिया का, लेकिन आता है ये संगठन का मादा तब आता है जब प्योरिटी की पावर हो। कहेंगे कि अभी कहते थे मुसलमानों में प्योरिटी नहीं होती, वो तो विभिचारी होते हैं, कोई एक पत्नी से विकारी बनता है और कोई अनेक पत्नियों से भी विकारी बनता है, तो अंतर तो हो जाता है ना। ज्यादा विकारी कौन बनेगा है? अनेक पत्नियों वाला ज्यादा विकारी बनेगा। लेकिन भारतवासी राजाएं जो हैं, वो कितनी कितनी पत्नियां रखते रहे, सैकड़ों पत्नियां रखी। यथा राजा तथा प्रजा। अब प्रजा के पास तो इतना पैसा, माल मिल्कियत, इतना मान मर्तबा है नहीं, जो 100-100 रानियां रखेगा तो वो क्या करेंगे है? क्या करेंगे? अरे कोई बोलता नहीं। उनके पास इतना धन पद मान मर्तबा नहीं है तब क्या करेंगे वो? छुप के करेंगे, चोरी चकारी से करेंगे। जब तक तलाक न दे तब तक दूसरे के साथ संबंध नहीं कर सकते। तो बताओ अंतिम जन्म में आकर के भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं या इस्लामी या मुसलमान ज्यादा नीचे गिरते हैं? भारतवासी चोरी चकारी से करते हैं, इसलिए जास्ती नीचे गिर जाते हैं, जामड़ी बुद्धि वाले बन जाते हैं। इसलिए उसका नाम है पाकिस्तान। कैसा स्थान? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को अपने मुकाबले क्या कहते हैं? अपने देश का तो नाम रख दिया क्या, पाक, पाकिस्तान। और हिंदुस्तान को किस नजर से देखते हैं? नापाक। पाक माना पवित्र। तो उन्होंने जो नाम रखा है वो आइडिया सही है या झूठा है? है? सही है। तो भारतवासी बहुत नीचे गिरते हैं। अभी भारतवासियों को उठाने के लिए बाप आया हुआ है, वो बता रहा है कि जितनी प्योरिटी होगी उतनी तुम्हारे अंदर यूनिटी आवेगी, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी आ नहीं सकती। कहते हैं राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। अरे रावण को मनुष्य मिल गए और राम भगवान को बंदर मिले, ये क्या बात हुई है? इसका कारण क्या है? बंदर बुद्धि मनुष्य क्यों मिले? क्योंकि बंदर सबसे जास्ती विचारी बन जाता है। क्योंकि बंदर सबसे जास्ती व्यभिचारी बन जाता है। ये भारतवासी आत्माएं भी सबसे जास्ती व्यभिचारी बन जाती है। इनके लिए मुरली में बोला हुआ है, आज भारत में घर घर में वैश्यालय है। मुरली इतना खुला बोलती है, ये हालत है समाज की, भारतीय समाज की। बाबा तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। मुसलमानों ने भी तो शुरुआत से ही, पहले ही जन्म से 2500 साल पहले भाई भाई बहनों में शादी होती थी। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया, अभी तो 500 साल के बाद बहुत हालत नीचे गिर गई होगी। भय बर्ण शंकर सबे, सब बर्ण शंकर हो गए, कोई स्वच्छ जाति का नहीं रहा, कोई पक्का ब्राह्मण नहीं रहा, ब्राह्मणों का खून खराब हो गया, कोई पक्का छत्री नहीं रहा, क्योंकि अंदर अंदर चोरी हो रही है। वो चोरी होने से क्या होगा, खून खराब होता चला जाता है। तब जब ऐसा खून खराब हो जाता है तब बाप को भारत में आना पड़ता है, पहले बुद्ध रूपी खून को सुधारता है। बुद्ध रूपी खून को सुधारने के लिए जो संकल्पों का खून है उसको सुधारने के लिए ज्ञान देना पड़ता है, सच्चा ज्ञान देता है। एक ही सच्चा है और एक से ही सच्चा ज्ञान आता है, बाकी सृष्टि पर सब झूठे हैं, क्योंकि सब संग के रंग में आ जाते हैं। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जो कभी भी संग के रंग में नहीं आता है। कोई कहे वो संग के रंग में नहीं आता है, ये क्या बड़ी बात, 5000 साल परम धाम में हम भी पड़े रहे तो हम भी किसी के संग के रंग में नहीं आएंगे, ऐसे नहीं। भले वो 5000 साल सुप्रीम सोल रहता है परम धाम में, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है, पतित तन में आता है, या कोई नए देश में आ जाता है। पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है, और दुनिया का जो पतित से पतित मनुष्य है उसमें आता है, जो आखिरी जन्म में सबसे जास्ती पतित बन जाता है। उसकी यादगार क्या है? अरे उसकी यादगार भी कुछ होगी, भक्ति मार्ग में तो यादगारें हैं ना। क्या यादगार? शंकर को भी काला दिखाई दिया, राम को भी काला दिखाई दिया, कृष्ण को भी काला दिखाई दिया, और शिवलिंग भी काला दिखाई दिया। क्यों काला दिखाया? कहते हैं ना काला मुंह कर दिया, नाम ही रख दिया श्याम, और फिर लास्ट में बनता है सुंदर। तो जो मुखिया है वो ही श्याम हो जाएगा, तो बाकी सब कैसे हो जाएंगे? क्या होंगे? कर्मुए होंगे ना। उनकी यादगार जैनियों के मंदिर में देखने को मिलती है। जैनियों के दो प्रकार के मंदिर हैं, कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बनी हुई है, देखा हो सबने, देखना देखना चाहिए। नीचे जो मंदिर है वो सफेद मूर्तियों का है। क्या? श्वेतांबर, अंबर माना, अंबर माना चोला, वस्त्र। उनका शरीर रूपी वस्त्र कैसा है? श्वेत है। ब्रह्मा सरस्वती ने कैसा पार्ट बजाया? श्वेत पार्ट बजाया या काला पार्ट बजाया? हैं? श्वेत पार्ट बजाया। तो उस समय वो और उनके फॉलोअर्स जो भी तैयार हुए वो सब श्वेतांबरी हुए। और अभी एडवांस पार्टी निकली है। एडवांस पार्टी का मुखिया तो राम वाली आत्मा, और सेना बनाती है बंदरों की। बंदर तो जितने भी जानवर दुनिया में होते हैं उनमें सबसे जास्ती विकारी माना जाता है। उन बंदरों की सेना राम लेते हैं। भगवान बाप उन बंदरों के मुखिया में प्रवेश करता है। बंदर भी दो प्रकार के होते हैं, खास करके ऐसे तो बहुत प्रकार के बंदर है लेकिन खास दो प्रकार के। कौन कौन से? काला मुंह वाला बंदर, लंबी पूंछड़ी वाला, और एक लाल मुंह वाला बंदर। लाल मुंह वाला क्रोधी बहुत होता है और काला मुंह वाला काम ही बहुत होता है। ये काम और क्रोध है, यही मुख्य विकार है। तो ऐसे बंदरों को मंदिर लायक बनाने के लिए बाप आते हैं, पहले पहले उनको ज्ञान की गहराई बताते हैं, और वो ज्ञान की गहराई जब उनकी बुद्धि में बैठ जाती है तब प्रैक्टिकली उनको ये बताते हैं कि तुम्हारी माला तो है, ये माला शिव की माला तो है, रुद्रमाला तो कही जाती है, जन्म जन्मांतर के राजाएं तो बनेंगे, लेकिन ये विजय माला में अभी पिरोने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला बनके तैयार हो जाती है तो भी विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, और विकारों पर जब तक विजय नहीं हुई है तब तक प्योरिटी नहीं कही जा सकती। प्योरिटी नहीं है तो बंदरों की यूनिटी भी नहीं बन सकती। इसलिए बाप को कहना पड़ता है, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले कौन? सरेंडर्ड हैंड्स है? नहीं, सरेंडर नॉन सरेंडर की बात नहीं है। जो सन्मुख बैठ करके अंदर एक ही स्थान में बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, वो अंदर वाले हैं सभी। चाहे गीता पाठशाला में है, चाहे मिनी मधुबन के संगठन में इकट्ठे होते हैं, और चाहे अपने पर्सनल संगठन बनाते हैं उनमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन हैं वो सब घर के, बाप के घर के बच्चे। उनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने बाप के घर में जाकर के निश्चय रूपी जन्म न लिया हो। क्या कोई ऐसा है? है? ऐसी कोई आत्मा है जिसने बाप के घर में जाकर के जन्म न लिया हो? निश्चय बैठता है माना जन्म लिया, निश्चय उखड़ता है माना मृत्यु हो गई। तो बेसिक नॉलेज में से निश्चय उखड़ गया माने वहां से मृत्यु हो गई, और फिर आत्मा सफर करती है नया जन्म लेने के लिए। तो 9 महीने पेट में पकना पड़ता है ना, तो ये भी 9 दिन की भट्टी है। एक दिन जाने के लिए, एक दिन आने के लिए, और 7 दिन की भट्टी। अभी मुरली में भट्टी का जिक्र आया ना, 7 दिन का, बहुत गहरी बात है। जब जाते हैं तो भी ज्ञान की बातें और भगवान की बातें ही बुद्धि में रहती है। कहां जाके हमको पकना है भट्टी में? से बच्चा होता है ना, जब 9 महीने पेट में पलता है तो बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो ऐसे यहां भी जब भट्टी करने जाते हैं तो जाने के दिन भी दुनिया भूल जाती है, भले ट्रेन में सबके साथ बैठ करके जाए या बस में बैठ के जाए, मन बुद्धि कहां लगी रहती है? जहां जाना है वहां मन बुद्धि लगी रहती है। और फिर जब 7 दिन का डोज भर के वापस आते हैं तो 9वें दिन वही ज्ञान की बातें बुद्धि में गूंजती रहती है। तो ज्ञान योग की भट्टी तो हो गई ना पक्की, और 7 दिन वहां जब रहते हैं तो भी बाहर की दुनिया से संपर्क तोड़ दिया जाता है। चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, मुरली में बोला, फोन भी नहीं कर सकते, उस घर की 4 दीवारी से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर बाहर भी निकले क्या बच्चा 9 महीने पेट में ना पले, 5 महीने बाहर आ जाए तो गर्भ कच्चा रह जाएगा या पक्का रह जाएगा? कच्चा गर्भ हो जाएगा, कमजोर आत्मा पैदा होगी, पता नहीं जिंदा रहे या न रहे। तो ये 9 दिन की भट्टी पूरी करने के बाद निश्चय बुद्धि बनकर के जो बच्चा पैदा होता है वो बाप का बच्चा बनता है, बाप के घर का बच्चा। तो अंदर का हुआ या बाहर का हुआ? अंदर के बच्चे हो गए हैं, तो बाप के अंदर के बच्चे। बाप भगवान दुनिया में जब प्रत्यक्ष होता है तो कौन से देश से प्रत्यक्ष होता है? भारत देश से। भारत देश में भी उत्तर भारत से प्रत्यक्ष होता है, पूर्वी भारत से प्रत्यक्ष होता है, पश्चिमी भारत से प्रत्यक्ष होता है या उत्तरी भारत से प्रत्यक्ष होता है? भारत क्या, भारत में भी भगवान की जन्मभूमि कहाँ गाई जाती है? है उत्तर भारत गाई जाती है, चाहे वो शंकर जी भगवान के रूप में हो, चाहे राम भगवान के रूप में हो, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में हो। राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या मानी जाती है, वो भी उत्तर भारत में। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा मानी जाती है, वो भी उत्तर भारत में। और शंकर का तो जन्म दिखाया ही नहीं जाता, फिर भी उनका स्थान कौन सा माना जाता है विशेष? काशी वाराणसी, वो भी उत्तर भारत में। तो भगवान जहां आता है, जहां प्रत्यक्ष होता है, उस घर के सब वासी बच्चे होने चाहिए ना। तो अंदर के बच्चे हो गए, उनके लिए बोला कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या ले जावेंगे? हैं? क्या ले जावेंगे? अरे क्या ले जावेंगे? पद ले जावेंगे, बाप का वर्षा ले जावेंगे। कौन सा वर्षा ले जावेंगे? सुख शांति का। हाँ, जितनी रानियों को, भारत की जो रानियां बनती हैं, विजयमाला के दाने बनती हैं, उन विजयमाला के दानों को जितना सुख शांति मिलती है उतना सुख शांति राजाओं को नहीं। जंग वो युद्ध में जावेंगे, मारकाट मचावेंगे, मारो और या अपने को मरवाओ। युद्ध भूमि में क्या होगा? खून की नदियां बहेंगी, तो कोई सुख हुआ? तो असली सुख किसने भोगा? रानियों ने भोगा। भले मान मर्तबा नहीं मिलता है, क्या शोहरत नहीं होती संसार में रानियों की, जैसे महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज हैं, उतनी शोहरत रानियों की नहीं हुई है। रानियों की शोहरत कम और राजाओं की शोहरत जास्ती हुई है। तो मान मर्तबा को बैठ के चाटना है या सुख शांति को चाटना है? सुख शांति को चाटना है। सुख शांति जीवन में बनी रहे, आत्मा सुख में रहे, शांति रहे, और क्या चाहिए? तो विजयमाला वाले ले जावेंगे, क्या ले जावेंगे? शांति अर्थात मुक्ति का वर्षा, दुख दर्दों से मुक्त। वो आत्मा ऐसे स्थान पर इकट्ठी कर दी जावेंगी जहां सुख और शांति दोनों होगी। 3 धाम बनेंगे अंत में, 3 धाम बनेंगे जिनका फाउंडेशन 36 में ही 37 में ही डाला गया। मैं अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। वो तीनों मूर्तियां शरीर रूपी धाम है। आत्मा का धाम कौन सा होता है इस दुनिया में? शरीर। तो उन श्रेष्ठ 3 मूर्तियों में जिनकी मन बुद्धि निवास करती है, कोई की किसी मूर्ति में करती होगी, कोई की किसी मूर्ति में निवास करती होगी, जिसका जिससे 63 जन्मों का विशेष हिसाब किताब होगा, 84 जन्मों का, उस मूर्ति में उसकी बुद्धि निवास करती होगी। तो 3 संप्रदाय बन गए भारत के, शैव संप्रदाय, वैष्णवपंथी और ब्रह्म समाधि। ब्रह्म समाधि किसको मानते हैं? ब्रह्मा को विशेष मानते हैं, और वैष्णव पंथी विष्णु को विशेष मानते हैं, और शैव संप्रदाय वाले शिव अर्थात शंकर को विशेष मानते हैं। तो ये तीन धाम बन गए, शांति धाम सबसे ऊपर, सुख धाम सेकेंडरी, और थर्ड क्लास नीचे दुख धाम। ये तीन शरीर तीन धाम हो गए, दुख धाम के वासी हो। मुरली में पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं ना मुरली में, क्या पूछते हैं? अपने दिल से पूछो, सुख धाम के वासी हो, दुख धाम के वासी हो, या शांति धाम के वासी हो, कहां के वासी हो? तो कोई समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे हैं। आप समझ में आया? ब्राह्मणों की दुनिया में तीन कैटेगरी के खास ब्राह्मण है। कोई की बुद्धि ब्रह्मा की मूर्ति में लगी रहती है, लगी रहती है नहीं लगी रहती है। कोई की बुद्धि विष्णु की मूर्ति में लगी हुई है। उनसे कहा जाए कि एडवांस नॉलेज इतनी बढ़िया है, आप सुनते क्यों नहीं है? और सुनते हैं तो उसको धारण करके फिर एडवांस पार्टी की तरफ जाते क्यों नहीं है? तो कहेंगे जब तुम्हारी वैष्णो देवी लक्ष्मी निकल आवेगी तो हम भी निकल आवेंगे। हम तो विजय महाराज के साथ रहेंगे, हम किसी की बात मानने वाले नहीं है। तो उनकी बुद्धि कहां रह धरी हुई है? विष्णु की मूर्ति में रखी हुई है। तो तीन धाम के वासी हो गए। अब यहां जो प्लानिंग पार्टी है, वो प्लानिंग पार्टी की बुद्धि कहां रखी रहती है? है कहां रखी रहती है? कौन सी मूर्ति में? और वो मूर्ति कौन से धाम के नजदीक है? परम धाम की, शांति धाम की नजदीक है। तो पूछा और फिर जवाब भी दे दिया। क्या क्या जवाब दे दिया? कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो शांति धाम के बाहर कौन सा धर्म, कौन सा धाम आता है? शांति धाम से जब आत्माएं बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले सुख धाम में आती है। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। किस बात में रह जावेंगे? सुख और शांति की जो असली प्राप्ति होनी चाहिए उसमें रह जावेंगे। शान शौकत तो मिलेगा, मान मर्तबा मिलेगा, कीर्ति बहुत फैलेगी, लेकिन आत्मा को जो सुख होना चाहिए जन्म जन्मांतर का, शांति मिलनी चाहिए, शांत और सुख में जो आत्मा रहनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब ये तीनों धाम प्रैक्टिकल रूप में भी तैयार होने, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहां उतार लेंगे? उत्तर भारत में उतारेंगे, राजस्थान में उतारेंगे, या दक्षिण भारत में उतारेंगे? हैं? कहां उतारेंगे शांति धाम को? हैं? राजस्थान में। हाँ, जो आबू अब्बा की भूमि कही जाती है वो माउंट आबू, वहां बीज रूप आत्माएं सबसे पहले इकट्ठी होंगी। क्या बीज ही तो सबसे पुराने हैं ना? तो जिस सृष्टि की आदिकर्ता बीज पुराने हैं वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे, जो परमधाम का निर्माण करने वाले होंगे। सबकी निसंकल्प स्टेज बनी हुई होगी वहां, और जो भी बाहर से आने वाले वहां पहुंचेंगे वो भी निसंकल्पी हो जाएंगे। जैसे अभी भी कोई कोई महसूस करते हैं कि बाबा के सामने जाने से क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं, या फोन से भी बात करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हाँ, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, फोन से बात करना शुरू हो, सब भूल गए। तो वाइब्रेशन का असर पड़ता है ना। तो ऐसे ही वो स्थान ऐसा बन जाएगा कि दुनिया की कैसी भी दमचक्कर मचाने वाली आत्मा हो वहां पहुंचेगी तो तो एकदम निसंकल्पी बन जाएगी। जो शांति का अनुभव प्रैक्टिकल जीवन में वहां पहुंच करके अनुभव करेगी, वो दुनिया में अनुभव नहीं करेगी। तो शांति का अनुभव इतना ही चाहते हैं या जीवन में रहते सुख भी चाहते हैं, दुख नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? आत्मा चाहती क्या है? शांति, बस शांति धाम में रहेंगे है? हाँ, नहीं चाहते क्या आप? ज्यादा जन 84 जन्म है ना आपके, तो 84 जन्मों में क्या चाहते हैं? सिर्फ शांति चाहते हैं। अगर सिर्फ शांति चाहते हैं तो विदेशी हो गए, नाम दे देंगे डबल विदेशी। क्या नाम दिया हुआ है? डबल विदेशी। माने ये बीज रूप आत्माएं सबसे नीचे गिरती है ना, तो सबसे जास्ती नीचे गिरेंगी तो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आवेंगी ना अंतिम जन्म में, तभी तो नीचे गिरेंगी। संग के रंग में आएंगे तब तो नीचे गिरेंगे, कि ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे। तो आखिरी जन्म में ये सारे ही बीज कहां गिरते हैं जाके? एकदम पतित, एकदम नीचे गिरते हैं जाकर। जब नीचे गिर जाते हैं तो विदेशियों से भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए बोला डबल विदेशी। कैसे विदेशी? डबल विदेशी। लौकिक परिवार वालों से भी ठोकर मिलती है, फिर अलौकिक बेसिक परिवार वालों से भी ठोकर मिलती है। तो दोनों दुनिया से, दोनों जहान से मारे जाते हैं। 500 करोड़ की दुनिया से भी ठुकराए गए और ब्राह्मणों की दुनिया से भी ठुकराए गए। तो डबल विदेशी हुए ना, कि देशी हुए? डबल विदेशी आखिरी जन्म में जाके बनते हैं। सब जन्मों में भले नहीं बनते हो, लेकिन आखिरी जन्म में डबल विदेशी बनते हैं। उन डबल विदेशियों में से फिर चुनाव होता है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जो माला बनती है जिसको कहते हैं अष्टदेव, जो सजाए नहीं खाते वो पहले बनती है, उसके बाद 108 की माला बनती है। इसलिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। मतलब 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें सूर्यवंशी ग्रुप जब तैयार होगा तो पावरफुल संगठन तैयार होने पर, पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर दूसरे ग्रुप को खींचता जाएगा। पहले चंद्रवंशी ग्रुप खींचे या इस्लामवंशी ग्रुप खींचे, कोई ग्रुप खींचेगा या नहीं खींचेगा? हैं? खींचेंगे। तो जो खींचेंगे उनसे माला तैयार होती जाएगी। अभी मालाएं तैयार हो रही है, देखना है हमारा मन का लेफ्टिस्ट में जा रहा है या राइटियस में जा रहा है। आदि से अंत तक किसी धर्म में कन्वर्ट होने वालों में जा रहा है या न कन्वर्ट होने वालों में जा रहा है, क्योंकि मां जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट तो नहीं होती, लेकिन दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो जगदम्बा के बच्चे बन जाते हैं और मां बच्चों से प्रभावित हो जाती है। तो प्रभावित होना माना, प्रभावित माना प्रजा। तो प्रजा को आधीन रहना पड़ता है या स्वाधीन होने से काम चलता है? आधीन रहना पड़ता है। माताओं का स्वभाव ये होता है, बच्चियां हैं तो बाप के कंट्रोल में आधीन है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन है, मां बन जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन हो जाती है। ये भारतीय स्त्रियों का स्वभाव है। तो कहा जाता है चंद्रवंश, ये दो वंशों से नई दुनिया की शुरुआत होती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अभी रुद्रमाला बन गई या नहीं बन गई है, या बनने की शुरुआत हो रही है? है, बन रही है, बनने की शुरुआत हो रही है। होते होते पूरी रुद्रमाला तैयार हो जाएगी और जब रुद्रमाला तैयार हो जाएगी तो प्रत्यक्षता नहीं होगी, प्रत्यक्षता कम होगी। प्योरिटी से ही सारे काम होते हैं क्या? दुनिया के जितने भी काम हैं वो सारे प्योरिटी से होते हैं। सत्युग में प्योरिटी के कारण प्रकृति सब कुछ मुहैया करेगी, कोई कारखाना नहीं होगा। एरोप्लेन बनाने के कारखाने होंगे? नहीं होंगे। कारखाने नहीं होंगे तो ऊपर उड़ेंगे कैसे विमानों में? है
संकल्प शक्ति काम करती
है। संकल्प शक्ति काम, अभी नहीं संकल्प शक्ति काम करती है। नहीं, प्रकृति ही ऐसे जीवड़े तैयार करेगी जो तुम्हारे विमान बन जाएंगे। ऐसे ऐसे पक्षी होंगे, प्राइवेट पक्षी भी होंगे। ऐसे बड़े बड़े आदमियों के आजकल प्राइवेट विमान होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे। हाँ, तो इशारा किया इधर तो इधर घूम गए, इधर किया तो इधर घूम गए, ऊपर उड़ो तो ऊपर उड़े, नीचे बैठ जाओ तो नीचे आ जाएंगे। और कैसे होंगे? एक्सीडेंट प्रूफ। आज तो विमानों का एक्सीडेंट भी होता रहता है, डर लगा रहता है, इतने ऊंचे उड़ रहे हैं पता नहीं कब आग लग जाए, क्या हो जाए, चूहा हुआ घुस जाए, तार आर काट दे। ये होगा तो सब कुछ, लेकिन कौन सी पावर के आधार पर होगा? है प्योरिटी की पावर पर आधार पर होगा। लेकिन प्योरिटी की पावर रुद्रमाला के मणकों में दिखाई नहीं दे रही? दिखाई दे रही, अपने अपने अंदर दिखाई दे रही है? है नहीं दे रही, हताश हो रहे हैं। हताश होने की बात नहीं है, सहयोग से दुनिया के सारे काम बन जाते हैं। क्या लंगड़ा चिल्लाता रहे कि मैं तो लंगड़ा हूं, कैसे नदी पार करूंगा, ये तो बहुत भारी विषय वैतरणी नदी है, मैं लंगड़ा कैसे पार करूंगा? तो क्या करना चाहिए लंगड़े को? है अंधे भी तो दुनिया में बहुत हैं, तो उन अंधों का आसरा ले लेना चाहिए, सहयोग ले लेना चाहिए ना। कब से अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला हुआ है कि विजयमाला का आवाहन करो, कर रहे हैं? है? कर रहे हैं? अब तक भी बुद्धि कहीं कंसंट्रेट नहीं हुई है। विजयमाला का आवाहन होगा और काम पूरा हो जाएगा। प्योरिटी वाली जो आत्माएं हैं वो एक्स्ट्रा सहयोग दे देंगी। उस विजयमाला के हेड्स के निकलते ही क्या मिसाल दिया है, जैसे शहद की मक्खियों की रानी निकलती है तो पीछे पीछे सारी मक्खियों का हुजूम जाता है, तो इतनी ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियां अगर निकल पड़ेंगी एडवांस पार्टी में तो प्रत्यक्षता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो जो करना है सो करते नहीं है, क्या करते हैं? जो कुमार अपने को बहुत होशियार समझते हैं ज्ञान में, वो रुद्रमाला के मणकों में ही शादियां रचा रहे हैं, उनकी बुद्धि रुद्रमाला में ही लगी चली जा रही है। तो मुसलमान हुए या देवी देवता सनातन धर्म के हुए? मुसलमान हुए। मुसलमानों में भाई बहनों में शादी होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे आत्मा आत्मा क्या हो, भाई भाई हो। रुद्रमाला के मणकों को तो इस स्टेज पर पहुंचना है, ऐसी आत्म की स्टेज धारण करनी है जो आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई दिखाई दे, अनुभव में आए, भाई बहन भी देखने में ना आवे। बुद्धि का योग अगर आपस में एक दूसरे में जाता है तो इसका मतलब विधर्मी बन रहे हैं या स्वधर्मी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? विधर्मी बन रहे। भले पति पत्नी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी बोल दिया है मुरली में कि यहाँ की कोई चीज इस दुनिया की नई दुनिया में नहीं जाएगी।
इस दुनिया के जो जोड़े हैं वो भी नई दुनिया में नहीं जाएंगे। जो यहाँ पति पत्नी है वो वहां पति पत्नी बन करके नहीं जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो जब बता दिया कि वो चेंज होना ही है तो आपस में बुद्धियों क्यों लगाना, अटैचमेंट क्यों रखना? अगर अटैचमेंट रखेंगे तो क्या साबित होगा? है कौन से धर्म में जाएंगे? विधर्मी साबित हो जाएंगे। अभी क्या करना है? एक शिव बाबा
दूसरा
ओ।